سورة إسراء آية نمبر 60 تک. نحن عالم بما يستبعون به, ہم زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک, جب وہ سنتے ہیں آپ کی طرف, یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ کیا دل کے اندر ان کے ہو رہا ہے؟ حق کی طلب کتنی ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور کیا وہ سنتے ہیں, کیا باتیں ہیں جن کے اوپر کان لگاتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کو پتا ہے. جب پریٹینڈ کر رہے تھے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں, اللہ کو پتا ہے. استمعون, استماع کہتے ہیں غور سے کان لگا کے سننا. کیا وہ سن رہے ہیں؟ کس نیت سے سن رہے ہیں؟ کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو پتا ہے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, کیونکہ وہ ایسے بولتے تو یعنی دکھتے تو ایسے تھے کہ جیسے بڑے غور سے سن رہے ہیں, تاثر تو یہی دیتے تھے کہ ہم تو بڑے ہی مخلص ہیں, ہم دیکھیں کتنی غور سے باتیں سنتے ہیں, اور اس کے بعد باہر جا کے کچھ اور باتیں کرتے تھے. اسی لیے فرمایا وَإِذْ نَجْوَى, وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, اور جب وہ سرگوشیاں کرتے, جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے بیٹھ کے باتیں کرتے, اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں اس قرآن پہ. اذ یقول الظالمون, ادھر دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑا غور سے سنتے ہیں, اور جب باہر جاتے ہیں نجوا کرتے ہیں ان کے ساتھ یعنی سرگوشیاں کرتے ہیں, تو ظالم کہتے ہیں تتبعون الا رجلا مسحورا, تو مسلمانوں کو کہتے ہیں, کمزور ایمان والے مسلمانوں کو یا نئے نئے جو مسلمان ہوئے ان کو جا کے کہتے ہیں تم تو ایک آدمی جو جادو زدہ ہے, جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے, اس کے پیچھے چل رہے ہو. یعنی ان کو ہٹانے کے لیے یہ وہ حربہ استعمال کرتے تھے کہ ہم نے تو سن لیا, ہم تو سن کے آئے ہیں, یہ ساری یہ جادو کی باتیں, تو تم تو ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو جادو والا ہے, جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. انظر کیف ضرب لک الامثال, کہ دیکھیے کیسے وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. کیسے مثالیں بیان کرتے کہ کبھی کہتے ساحر ہے یعنی جادوگر ہے, کبھی مجنون, کبھی کاہن, کبھی شاعر. فدلو فلا یستطیعون سبیلا, وہ بھٹک گئے ہیں, ان کو خود ہی راستہ نہیں پتا, راستے پہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یعنی دلہ کہتے ہیں کہ نشان گم ہو جانا راستے کا, گم کر دینا, راستے سے ہٹ جانا, اور خود ہی بھٹکے ہوئے, ان کو خود ہی نہیں, کنفیوز اتنے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہیں تو کہیں گے. کسی کو کہتے یہ کاہن ہے تو کہتے نہیں تو کاہن تو نہیں لگتے, یہ کاہن تو ایسی نہیں بات کرتا. کسی کو کہتے مجنون ہے, وہ کہتے مجنون تھوڑی ہے, یا مجنون مجنون ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی کو کہتے شاعر ہے, شاعر بڑے بڑے شاعر کہہ رہی تھی, شاعری یہ تو کسی انسان کی شاعری ہے ہی نہیں. اب سمجھ نہیں آتی تھی ان کو کہ کریں تو کریں کیا. آج بھی دیکھیں یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں نا, چین سے پھر بھی نہیں بیٹھتے, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لونڈیوں کا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں, کبھی کوئی ایک بات پہ تو رکتے ہی نہیں, کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑے رکھتے, اور بے دلیل باتیں, بے سوچے سمجھے باتیں. سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, داؤد علیہ السلام کی, تو اتنی بیویوں کے پاس وہ لوگ جاتے تھے. ان پیغمبروں کو نہیں کہتے, لیکن آج وہی انہی کے ماننے والے, ان پیغمبروں کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک تو ان سے ان کے لیے قرآن کو سننا مشکل, اور توحید کی بات کو سننا مشکل, توحید سے نفرت ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ تو جادو زدہ ہے. جب نوح علیہ السلام نے بھی توحید کی طرف لوگوں کا بلایا تھا تو لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا, کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے, کپڑوں سے منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں آ کے ہمیں یہ توحید کی باتیں نہ بتائیں. تو توحید بیس ہے, اس کو ضرور سمجھنا ہے, اس سے نہیں دور بھاگنا. اور دوسری یہ بات کہ جتنے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کچھ نہ کچھ تو ان کو کہیں گے نا, یہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے. کتنی بھی باتیں کر لیں وہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول لیں, لیکن ان کے اندر کوئی بھی سبسٹنس نہیں ہے, وہ بھٹکے ہوئے راستے سے. अगर आप वॉर करें तो उनकी उनकी बातों के अंदर बिल्कुल बेसलेस बातें करते हैं, लेकिन चूंकि इतने अंदर लावा पल रहा होता है, वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मजाक, ऐसी ऐसी तहकीर की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते हैं। क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम की रेपुटेशन किसी के जहन के अंदर खराब कर देंगे, किसी के उनको उनको अगर उनके ऊपर गलत बातें लगा के उनका इमेज खराब कर देंगे, तो जब रसूल का इमेज खराब कर दिया तो उसके बाद इस्लाम से वो इंसान तो समझ ले हट गया, वो बंदा फिर इस्लाम के ऊपर नहीं रह सकता। और यही वो चाहते हैं, शैतान का तो यही काम है ना। वकालू, और वो कहते हैं, अइज़ा कुन्ना इज़ाम व रुफ़ातन, जब हम हो जाएंगे हड्डियां और चूरा चूरा मर के हड्डियां, और हमारे हड्डियां भी वो सीधा होके उनका भी चूरा हो जाएगा, इन्ना लबाउथुना खलकन जदीदा, कि हम फिर उठाए जाएंगे एक नई पैदाइश। बार बार कुरान में कई दफा आया है कि उनके अकीदा आखरत में ये बहुत बड़े मुश्किल थी उनके लिए समझना कि कैसे हो सकता है कि हम हड्डियां हो जाएं, चूरा चूरा जाए, फिर उसके बाद हमें खड़ा किया जाए। अबू जहल हड्डियां ले आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उसने उनको हाथ में मसल के दिखाया कि देखो ये बिल्कुल, यानी इतनी ज्यादा वो सीधा हो चुकी थी कि हाथों के अंदर ही चूरा हो रही थी। तो उसने कहा इनको खड़ा करेगा, यानी असल में इंसान अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत को अपनी कुव्वत पे कयास करता है, ऐसी समझता है जैसे मेरी ताकत है, जैसे हम आजिज बेबस वैसे ही पता नहीं अल्लाह भी है, नऊज़ु बिल्ला, जैसे हम नहीं कर सकते इन हड्डियों को, हमारे तो सामने ये गली सड़ी हड्डियां, ये रेजा रेजा, ये कैसे खड़ी हो सकती जब हमारी अकल में नहीं आ सकता, तो फिर अल्लाह नहीं कर सकता। ये नहीं बात, असल मसला यहाँ पे होता है जब इंसान अल्लाह की कुव्वत और ताकत को नहीं जानता और नहीं पहचानता, उसको समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला की कुव्वत क्या है, तो तब इंसान ऐसी बातें करता है। जो इंसान जानता है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शय कदीर, और अल्लाह ने हमें पहली मर्तबा भी पैदा किया जब हम मट्टी ही तो थे, उसी मट्टी से पैदा किया, तो अब भी हड्डियों का चूरा होकर मट्टी हो गया तो दोबारा पैदा कर सकता, तो फिर उसको तो मसला नहीं होता, मसला इनको है जिनको समझ नहीं। तो फरमाया कुल, कह दीजिए, आप इनको जवाब दे। अब उनका इतराज बताया और उसका जवाब बताया, कूनू हिजारतन औ हदीदा, चाहे तुम पत्थर बन जाओ, चाहे तुम लोहा बन जाओ, ऐसी चीज भी, इतनी सख्त चीज भी बन जाओ जो इतनी सख्त है कि इससे ज्यादा बजाहिर सख्त चीज कोई नहीं, औ खलकन मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या इससे भी कोई बड़ी चीज बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में कोई, इससे भी कोई बड़ी चीज है ना, वो भी तुम बन जाओ, तब भी अल्लाह तुम्हें खड़ा करेगा। तो तुम पत्थर हो, लोहा हो, पत्थर से ज्यादा सख्त चीज हो, इंसान तो सबसे सख्त चीज पत्थर को समझता है ना, इसलिए कहता है पत्थर दिल फला, उससे भी सख्त चीज बन जाओगे फिर भी अल्लाह तुम्हें दोबारा खड़ा कर दे। ये अकीदे को इतना रीइंफोर्स क्यों किया गया? इसलिए कि अगर ये ईमान नहीं है ना, तो फिर सारे ईमान मुतजलजल हो जाते। अगर ये ईमान नहीं है कि आखरत है, तो इसका मतलब आपने अल्लाह ताला की कुव्वत को वैसे नहीं समझा जैसे उसकी कुव्वत है, तो अल्लाह पे ईमान भी खत्म हो गया, और आपने रिसालत का भी इनकार कर दिया, क्योंकि रसूल ने भी आके ये बताया, रसूल ने आके ये बताया ना आखरत का, और रिसालत का भी आपने ईमान नहीं रहा जब, अगर आखरत पे ईमान नहीं, क्योंकि रसूल की बात को ही नहीं माना तो रिसालत पे ईमान ही खत्म हो गया। रसूल को आके किसने बताया? फरिश्ते ने, रिसालत का इनकार फरिश्तों का, एक ईमान का इनकार भी ना ईमानियात में से सबका इनकार है, तो पूरी इमारत हिल जाती है जब आप एक भी ईमानियात में से एक का भी इनकार करते। और ईमान बिलाखरा तो बहुत फाउंडेशंस में से है, बुनियादों में से है, ये जब हिलता है तो इंसान अमल से जाता है, हिलता है तो इंसान ईमान से जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये ईमान मजबूत हो कि हाँ अल्लाह हमें उठाएगा, हमें खड़ा करेगा, हमारा हिसाब किताब होगा, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जैसे ही कुरान ने डिस्क्रिप्शन बताई है, उसी तरह हमारा आखरत पर ईमान हो। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा एक दिन उठाएगा तो उसके बाद फिर अपना ही कुछ और ही बनाया हुआ दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, नहीं सभी बख्शे जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, सभी जन्नत में चले जाएंगे, वहां पे जहन्नम है ही नहीं। अब उस वक्त में उस मुआशरे के अंदर बाज लोगों का तो ईमान आखरत पे था ही नहीं, वो इस तरह की बात करते थे जैसे कुरान में। बाज का था तो वो कहते थे कि सारे वहां पे हमारी सिफारिशी हमारी सिफारिश ये बुत करा देंगे, ये जो लोग इनके पीछे इन बुतों के पीछे, और बस हमारी वहां पे खलासी हो जानी, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। यानी इतने गलत अकीदे ईमान बिलाखरत के साथ है। और ईमान बिलाखरत वही है जो पूरा का पूरा, ईमान बिलाखरत सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक कयामत का दिन है, ठीक है वो तो, ये आप किसी ईसाई को भी पूछेंगे वो भी कहता है डे ऑफ जजमेंट, वो भी कहता है। लेकिन मसला है कि जब ईमान बिल आखरत वैसा नहीं होता जैसा कि पूरा को पूरा बयान किया गया है, तब समझे ईमान ही नहीं। अब हर चीज पे आपने ईमान लाना है जैसे कि बयान की गई है कुरान और हदीस में। सिर्फ ईमान बिल आखरत ये नहीं कि कयामत आनी है, वो उसका इनकार करते थे लिहाजा उनका ईमान। अब अगर मुसलमान हो के कोई ये कहता है कि मैं जहन्नुम पे ईमान नहीं रखता, कोई जहन्नुम नहीं है या जन्नत नहीं है, मेरा उस पे ईमान नहीं है, तो ईमान बिलाखरा खत्म हो गया। फसे यकूलू ना मैं युआईदू ना, बस अनकरीब वो कहेंगे कौन लौटाएगा हमको, ये कैसे हो सकता है कि हम लौटाए जाएं। ये भी फिर अल्लाह ताला की ताकत उसकी पावर में शक कुलिल्लदी फतरकुम अव्वल मर्रा, तो इसका सिंपल जवाब जिसने पैदा पहली दफा किया वही दोबारा लौटा देगा। फसयुनगिदूना इलैका रुउसहुम, तो वो अनकरीब सर हिलाएंगे तेरी तरफ, अपने सरों को इस तरह हिलाएंगे जैसे कि बात बड़ी समझ आ रही है, सवाल जवाब हो रहा है ना, एक डायलॉग हो रहा है। और जब उनको एक बात का जवाब मिल जाता है तो सारा ऐसे करते जैसे बड़ा हाँ समझ गए, लेकिन असल में मजाक में सर हिला रहे होते ना जैसे हाँ हाँ पता है। फिर अगला सवाल करते यकूलू ना मता हुआ, फिर कहते कब होगा फिर ये, अभी तक तो हुआ नहीं, कब होगा फिर, कब पैदा करेगा दोबारा। कुल आसा ये कूना करीबा, आप कह दीजिए उम्मीद है कि वो करीब ही हो। याद रखे दो लफ्ज आसा और लाअल्ला, ये जब कुरान में आते ना तो शायद की बात नहीं होती, यकीन की बात होती है। अल्लाह ताला के लिए जब ये आस आ जाते हैं ना, जब अल्लाह ताला कोई बात करा तो वैसे इसका मतलब उम्मीद का होता है, हो सकता है शायद, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए ये आ जाए तो यकीनन ऐसा ही है, यकीन का माना देता है। तो यानी यकीनन वो करीब ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियां मिला के फरमाया कि मैं और कयामत ऐसे ही हैं, यानी अब मेरे बाद कयामत ही आनी है। नहु इन्नहुम यरौनहु बाइदा व नराहु करीबा, वो उसको दूर देखते हैं और हम करीब देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मारिज में कि वो तो कहते हैं बड़ी दूर है अभी कहाँ कयामत, और हम कहते हैं करीब, इसलिए कि इंसान की जो ही मौत आएगी उसकी कयामत शुरू हो जाती है, उसका हिसाब किताब भी हो जा शुरू हो जाता है, वो फरिश्तों को भी देख लेता है, उसको अगली दुनिया भी नजर आने शुरू हो जाती है, गैब का पर्दा भी उठ जाता है, उसकी कयामत तो शुरू हो गई ना। अब कयामत चाहे हजारों साल बाद आए, वो तो कब्र के अंदर अपने भुगत रहा है, जन्नत की तरफ की खिड़की खुल जाएगी या जहन्नुम की तरफ की खिड़की खुल जाएगी, या तो अजाब शुरू हो जाएगा या जजा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उसकी तो वहां की सारी चीजें शुरू हो गई, कौन है तेरा रब, कौन है तेरा रसूल, कौन है तेरा दीन, क्या ये हिसाब किताब शुरू नहीं हो गया। और क्या पता कि चंद सातों में चंद लम्हों में ये मौत आने वाली हो, आ कयामत का इंतजार करते रहे, नहीं नहीं अभी तो ईसा अलैहि सलाम नहीं आए, नहीं अभी तो ये नहीं हुआ, नहीं अभी तो ये निशानी नहीं पूरी हुई, अभी तो कयामत बड़ी दूर है, तो आराम से बैठे यूं लगता है कि जैसे हमने हमेशा ही रहना है, जब कयामत आएगी तो मरेंगे। नहीं, हो सकता है कि कल ही मर जाए, आज शाम ही मर जाए, कल सुबह तक ना हो, फिर तो हो सकता है बहुत करीब ही हो। अल्लाह हू अकबर, तुम्हारी कयामत तुम कहते हो दूर है या तुम कहते हो कब आएगी, हो सकता है करीब हो। ये कह के इंसान को झंझोड़ दिया गया कि वो एकदम डर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है एक दिन में है, दो दिन में है, साल में है, कब है। और अरबी का एक मुहावरा है कि जो चीज चल पड़ी है वो करीब ही है। यानी जो चीज वकूं पजीर होने वाली है ना, वो करीब है। अब आपको कहें कि ट्रेन वहां से चल पड़ी, तो समझ ले करीब ही है, बस आई खड़ी है, अभी जाए थोड़ी देर में, घंटे में आए, 2 घंटे में आए, आ ही जानी है उसने। तो फिर क्यों इस चीज को इंसान डिले करे अमल को, और सोचे कि हाँ जब आएगी तो देखी जाएगी। यौम यदाउकुम, जिस दिन फिर वो पुकारेगा कुम तुमको, फतस्तजीबूना बिहम्दी। तो जब वो पुकारेगा ना, पुकारना मतलब क्या है, सूर फूंका जाएगा, वो एक पुकार होगी। एक जब सूर का एक नफखा फूंका जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। बाज जगह पे 2 नफखों की बात है, बाज पे 3 की बात है, एक बेहोशी का, एक मौत का, एक दोबारा खड़े होने का। बाज में है कि नहीं, 2 ही नुफखे हैं, एक से मर जाएंगे, एक से दोबारा खड़े हो जाएंगे, एक से सब के सब तबाही हो जाएगी, एक से दोबारा जिंदगी होगी। इमाम शौकानी जो फतुल कदीर में इसी को तरजीह दी है कि 2 ही नुफखे हैं, लेकिन अब इन 2 नुफखों में कितना फासला है, कितना वक्फा है। बाज जगह पे आता है 40 साल का वक्फा है 2 नुफखों के दरमियान। अच्छा पहले ये बात कर लेते, ये औम यदाउकुम, जिस दिन वो पुकारेगा यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? कोई ये कहेगा नहीं अभी तो मैंने सोए रहना है, जैसे अलार्म पे हम कहते हैं अलार्म अभी बंद कर दो, अभी तो बड़ी नींद आई हुई, अभी मुझे सोने दो, थोड़ी देर में उठती हूँ, बस 5 मिनट और दे दो। कोई ये नहीं कहेगा 5 मिनट और मुझे अभी सोने दो, अभी नहीं मेरे से उठा जाता, अभी अभी तो मैं मर रहा हूं, यहाँ अब मेरी तो अभी हिम्मत नहीं उठने की। नहीं, सब एकदम खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं कह सकेगा अभी नहीं मैंने उठना, अभी मुझे सोना है, अभी नहीं मैंने जाना। और क्या करेंगे, बस वो बस तुम जवाब दोगे साथ उसकी हम्द के, उसकी हम्द के साथ, उसकी तारीफ के साथ, हम तो बयान करते हुए यानी उसका हुक्म मानते हुए, जिस सिमत में कहा जाएगा इस तरफ को चलो, सब उस तरफ को चलेंगे। कोई ऐसा भी नहीं करेगा कि मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है। यहाँ पे तो किसी को कहीं लेके जाना हो कितना मुश्किल होता है। आप हज उमरे पे चले जाएं, एक बस में ही 50 लोगों ने बैठना है, इतना मसला होता है, कोई किसी वक्त आ रहा है, कोई किसी वक्त, जितना मर्जी कह दो अपने टाइम की पाबंदी कर, नहीं आते, कोई लेट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वहां पे कोई नहीं ऐसे कहेगा, कोई लेट नहीं होगा, एक आवाज के ऊपर सबने उठ के चल पड़ना, लब्बाई कहेंगे, अल्लाह अकबर। तुम क्या जानो कि वो वक्त जिसको तुम दूर समझ रहे हो सकता है वो करीब हो। और तब वतजुन्नुना इन लबिस्तुम इल्ला कलीला, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया की जिंदगी का जो टाइम तुम्हें मिला था ये कितना कलील था। आज तो तुम्हें लग रहा है ना बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है, उस वक्त जब खड़े होगे ना तो फिर मुड़ के देखोगे तो लगेगा ये वक्त कितना थोड़ा था, इतना थोड़ा टाइम में रही, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला। ये आज हम कहते हैं पता नहीं, अभी तो मैं 30 साल की हूं, अभी तो मेरे पास बड़ा टाइम है, अभी तो मैं 40 की हूं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। ये आज की खुशफहमियां हैं, वहां पे देखना तो 100 साल की भी जिंदगी ऐसे लगेगी, ये तो क्या पलक झपकने में गुजर गए। लबिसना यौमन औ बाद यौम, हम तो ठहरे थे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, सिर्फ इतना सा लगेगा। यानी सारा जो टाइम दुनिया में भी गुजारा और जो बरजख में भी गुजारा, वो मिला जुला के भी एक दिन का वक्फा, तो जरा सा टाइम लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली समंदर में डुबो के उस पे से फरमाया कि कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डुबो के और फिर निकालता है तो उसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है ये दुनिया की जिंदगी है और ये समंदर आखरत की जिंदगी है। वो सोचे आखरत की जिंदगी कितनी तवील है, कितनी तवील है, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं ना, आप सब इस चीज को जरूर मानेंगे मेरी बात को, कितनी जल्दी वक्त को सर रहा, अब वाकई वक्त पकड़ा ही नहीं जा रहा। समझ ही नहीं आती किस तरह दिन रात हफ्ते महीने साल ऐसे भागे जा रहे हैं। क्या हमें लगेगा, फिर भी हमारे बड़े भी मानते हैं। आज उनसे पूछें, किसी बड़ों से, अपनी दादी नानी वगैरह से आप बात करें तो कहते हैं कि अब वक्त ज्यादा तेजी से गुजरा, उनके जमाने में ऐसा नहीं था। और ये कयामत की निशानियों में से हम उस दौर में आ गए हैं, इस दुनिया में आए हैं जो कयामत के करीब का दौर है। वाकई बोला आसान ये कू ना करीब, कयामत करीब है, हम रहे नहीं रहे मगर कयामत करीब है और उसकी निशानी है कि वक्त और तेजी से गुजरेगा। अब आप सोचे कि फिर क्या हमें क्या लगेगा, वो तो फिर भी कोई 100 साल जी लेते थे। हमारी तो एवरेज लाइफ ही बहुत, लाइफ स्पैन आज इतना छोटा है, इतनी कम है जिंदगी आज। 100 तक तो कोई नहीं पहुंचता, 90 तक भी कोई पहुंच जाता लोग मुंह खोल लेते, अच्छा 90 साल का हो गया, इतना ज्यादा हमारे लिए रेयर हो गया आज 90 साल भी उम्र। तो बताएं कि हमें पीछे मुड़ के क्या लगेगा कि हम कितना जिए हैं, हमारी जिंदगी अगर 70 साल की भी हो जाती तो हमें क्या लगेगा, पलक झपकना बस। और बड़ी बड़ी उम्रों वाले भी कह रहे होंगे वहां पे कि लबिसना यौम नौबाद यौम, तो हम क्या कहेंगे। वाकई हमारी तो उनसे कंपैरिजन करें तो पलक झपकना ही, अभी तक की जिंदगी पलक झपकना लगती, वहां पे जाके क्या लगेगी, इतनी जल्दी ये गुजर जाने। अल्लाह हू अकबर, इस एक बात के ऊपर ईमानो ना, व तजुन्नू ना, अल्लाह ताला खुद उस सच्चों से सच्चा बयान कर रहा है कि तुम्हें उस दिन ऐसा लगेगा कि हम बहुत थोड़ा रहे, नहीं रहे मगर बहुत थोड़ा, उससे ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। ये आज क्यों नहीं हम ये सोचते कि ये बहुत थोड़ा है मेरा कयाम, ये बहुत थोड़ा मेरा कयाम है और आगे का मेरा कयाम बहुत लंबा है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये आज क्यों नहीं आता, क्यों नहीं इस चीज का यकीन आता, क्यों नहीं जनाजा देख के किसी का मुझे ये होता कि मैं भी एक दिन इसके ऊपर हूंगी और ये दूर नहीं है, ये बड़ा कलील वक्त मेरे पास रह गया। हम में से अक्सरियत की आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, गुजार ली है हमने, आधी भी नहीं रह गई, फिर भी कितने मुतमईन है हम, फिर भी किसी को माफ करने में हमें कितना मुश्किल होता है जबकि हमें पता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता ही नहीं ना, ये सिर्फ पढ़ने की बात है, पता नहीं है, यकीन यही है कि अभी बहुत रहना, आधी नहीं गुजरी अभी मेरी बड़ी पड़ी भी है, यकीन ये है, मुंह से ये बोलते हैं कि हमारे पास वक्त कम है, हम मानने को ही तैयार नहीं। हम अपनी एज को देखते हैं, उसका नंबर कम कर देते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी उम्र बढ़ जाए, डिप्रेशन होने लगता है भाई उससे। तो अभी हम 20 साल के ही हैं, किसी ने कहा मैं तो 50 से ऊपर ही नहीं हुई, मैं अपने आप को 50 का ही समझती हूँ आज भी, अल्लाह जाने उनकी कितनी उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा बस मेरा वहीं पे वक्त हो गया। यानी अपने आप को हम धोखे में रखते हैं ना, हम मानना ही नहीं चाहते हमारी उम्र बढ़ रही है, अगर मानेंगे तो फिर हमें ये डर हो जाएगा अच्छा मेरा जाने का टाइम करीब आ गया, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ तो कहीं मैं सीधी ना हो जाऊं, उल्टे ही चलना चाहते हैं ना। हाँ बस उसी में अपने आप को धोखे में रखे हुए, इल्यूजन। देखो इंसान क्या किसी और को धोखा देगा, कितना बेवकूफ है, अपने आप को ही धोखा देता है, अपनी उम्र ही नहीं मानता, क्योंकि मान लिया तो फिर सीधा होना पड़ेगा, फिर दिल में ख्याल आएगा मेरे पास वक्त कम रह गया। वो चाहता है कि मैं इस ख्वाब में रहूं कि बहुत वक्त पड़ा हुआ है, फरिश्ते ने तो नहीं आके तेरी एज पूछनी, उसने तो नहीं आके कहना कि तेरे पास क्या कितना वक्त है, तुम अपने आप को कितनी ही एज की समझती हो, उसने तो कहना चलो अब। तो आज हमें लगता है बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, इसलिए किसी को माफ नहीं करते, इसीलिए लोगों के हकूक नहीं देते, इसीलिए रिश्तों की एक हमें कदर नहीं है, इसीलिए अपने अमल की फिक्र नहीं है, इसीलिए हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, इसलिए हम गुनाहों से बचते नहीं, इसीलिए हम नेकियों में बहुत तेज नहीं दौड़ रहे क्योंकि हम रिलैक्स हैं ना, इसलिए कि हम ये नहीं मानते कि बहुत थोड़ा वक्त है। तो जिस दिन यही मान लेना, इंसान के बड़ा थोड़ा वक्त है, देखना फिर कैसे भागता है। और मैं इसको साबित करूं इस बात से, देखिए किसी को कह दिया जाए ना, डॉक्टर कह दे तेरे पास वक्त कम है, फिर देखना कितनी तेज भागता है, फिर इतना रोना आता है कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, हाय मेरे पास, मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर की बात पे यकीन है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो करीब ही है, उसकी बात पे नहीं यकीन। डॉक्टर की बात पे यकीन जब आ जाता है कि हाँ मौत आनी है, क्या जिसको डॉक्टर नहीं कहता उसकी मौत नहीं आनी होती? एक को डॉक्टर ने बता दिया तो उसकी आ जानी है, और बाकी हम सारे बेफिक्र हैं और उसके लिए रो रहे हैं, अरे इस बेचारे को कह दिया कि इसके पास वक्त कम है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, उसके ऊपर रो रहे हैं, और अपने हाल क्या है? मुझे तो अल्लाह ताला ने बता दिया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस पे नहीं यकीन। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, वकुल लिइबादी, और कह दीजिए मेरे बंदों को, यकूलु लती हिय अहसन, वो कहें वो बात जो ज्यादा अच्छी हो, अच्छी बात कहें। ये किसको कहा जा रहा है? देखिए ये हर कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये हजरत उमर जो थे वो एक दफा किसी से बात कर रहे थे, तो जब बात हुई दीन ईमान के ऊपर तो उस काफिर के साथ तल्खी हो गई, और उमर चूंकि तबाना थे तो जुबानी तक बात नहीं रही बल्कि इससे भी आगे बढ़ गई, गुत्थम गुत्था हो गए और मुखालिफ को पिछाड़ दिया। तो अब ये आयत नाजिल हुई कि जो क्योंकि मुसलमान जो थे इस कदर उस माशरे में उनको दबाया जा रहा था, उनको हर तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनकी मुखालफत इतनी थी, और एक वक्त आ जाता है ना इंसान के रवैये में उसका इजहार होने लगता है, जाहिर है इतनी तलखी, इतनी तुर्शी, क्या क्या नहीं उनके साथ हो रहा था। तो अब भी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि नहीं आपको आसानी बात करनी, जब आपको दावत देनी है ना, तो हमने सूरह नहल में भी पढ़ा ना, बिल हिकमती वल मौइज़ा दिया, हिकमत के साथ दिल को नरम करने वाली बात करनी, ऐसे नहीं कि बहस मुबासा, ऐसे नहीं कि तलखी हो जाए, ऐसे नहीं कि आप अपने आस्तीने चढ़ाने लगे, ऐसे नहीं कि गुस्से में नथने फूलने लगे, आज तो मैंने इसको बता के रखना है ये कैसे, और भड़क रहे हैं और एक शोर मचा हुआ है। अक्सर ऐसे ही अंडा होती है ना, उसके बाद एक का मुंह एक तरफ, एक का दूसरी तरफ, एक दूसरे से बात करने से भी जाते हैं, ये अच्छी तबलीग हो रही है, इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं, तो ये नहीं करना। उस वक्त भी आसन बात करनी है। दूसरा इसके अंदर ये है कि सहाबा तंग आ चुके थे मुशरिकीन के रवैये से, तो वो इजाजत मांग रहे थे कि हमें इजाजत दें कि हम भी इनके साथ जरा दो दो हाथ करें, हम भी इनका मुकाबला जरा करें, एक हद है ना इनकी बात सुनने की भी, जब ताकत है कुव्वत है हम क्यों ना इनको जवाब दें। तो उनको कहा गया नहीं अभी नहीं, आपको इजाजत है, ठीक है। तीसरी बात एक और भी इसके अंदर है, देखिए कितने मफाहीम है ना जो मुफस्सिरीन ने एक ही आयत में कितनी बातें इससे अखज होती हैं। तीसरी बात इमाम कुर्तुबी और तबरी ने लिखा है कि इस आयत का मफहूम यह है कि आसन बात करो, और आसन बात तौहीद है, तो तौहीद को मौजू बनाओ, ये नहीं कि सारी दुनिया के मौजूआत कर लें, आप जी मुस्कुरा के लोगों से मिले, हमसाए का ख्याल रखे हैं, आप इंसानियत की खिदमत करें, वो सारी बातें हो रही हैं, बड़े लेक्चर हो रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन तौहीद पे आना ही नहीं, तौहीद के मौजू को नहीं छेड़ते, कहते नहीं नहीं इससे लड़ाई पड़ती है, इसको ना छेड़ो, तौहीद ही तो बेसिक चीज है, सारे अंबिया ने इसी के ऊपर तो अपना जो नुकता आगाज बनाया ना, जो अपनी बिगिनिंग का जो सबसे पहला जो पॉइंट बनाया और जो बेस बनाई वो तौहीद ही तो थी, उसके ऊपर नहीं बात करनी, और वो ही आसन बात है, सबसे भली बात। चौथी इसके अंदर बात ये है कि जब ये बात तो कि हाँ जब आप वो इमाम शौकानी ने ये लिखा है कि जब मुसलमान आपस में भी एक दूसरे के साथ मामलात करें तो अपने ताल्लुकात को बेहतरीन रखें, बेहतरीन बात करें एक दूसरे के साथ, झगड़ों में ना पड़े, एक दूसरे की मुखालफत में ना पड़े, कयामत तक के लिए देखें ये हिदायत दे दी गई कि हालात जितने भी खराब हो आपस में आपने जुड़ के रहना है, अपने ताल्लुकात खराब नहीं होने देना। और उसके लिए क्या करें, अच्छी बात करें, क्योंकि जुबान से ही तो बात शुरू होती, ताल्लुकात की खराबी कहां से शुरू होती, जब इंसान की जुबान से तल्ख बातें निकलती, जुबान से ऐसे कोई बात निकल जाती कि इसको कहते हैं ना कि तीर का घाव जो है वो उसका जो जख्म है वो फिर भी भर जाता है, लेकिन जुबान का जो जख्म है ना वो नहीं भरता। तो मुसलमानों के ताल्लुकात आपस में, चाहे दोस्तों के, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे बड़े लेवल पे आके कौमी लेवल पे उम्मत के लेवल पे आ जाए, छोटे से घर के यूनिट से अगर आप ले लें, मियां बीवी के ताल्लुक आते हैं, वालदैन और बच्चों के ताल्लुक आते हैं, ससुराली रिश्तों के ताल्लुक आते हैं, या बड़े लेवल पे ले लें उम्मत के ताल्लुक आते हैं, या आपस में कौम के या फिरकों के आपस में ताल्लुक आते हैं, कोई नस्ली कोई इलाकाई उसके अंदर ताल्लुकात आपके आपस में है, उनमें भी आसन बात करनी है। आसन बात, आप दोस्तों में बैठे हुए हैं, कई दफा ऐसी मैं देखती हूँ कि मजलिसें होती हैं जिसके अंदर कोई एक बंदा ऐसी कोई बात दूसरे को कह देता है ना कि दूसरा एकदम बुझ सा जाता है, वो हर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो आपके लिए बड़े अच्छे अपने दिल में जज्बात रहे, वो चाहे आपको कुछ भी ना कहे, आपने उसका मजाक उड़ा दिया वहां पे, या उसके ऊपर कोई तंज कर दिया, या जिसको हम कहते हैं ना लूज टॉक, डोंट डू लूज टॉक, बी वेरी केयरफुल। क्यों? इन शैतान यंजहु बैनहुम, इसलिए कि शैतान जो है ना फसाद डलवाता है। जब आप लूज टॉक करते ना, मुंह बस खोला हुआ है, जो मर्जी बड़ बड़ बोलते ही जा रहे हैं, कुछ सोच के तो बोलो किसी को क्या कह रहे हैं। जब आप ऐसी कोई बात मुंह से निकालते हैं जिससे दूसरे का किसी तरह भी वो दूसरे को अच्छी नहीं लगती, आप उसके बारे में आपने कोई बात ऐसी कह दी, चाहे उसकी जुबान के बारे में कह दी, उसके लिबास के, उसकी अपीयरेंस के, उसके वो जिस कौम से ताल्लुक रखता है उसके बारे में, किसी बारे में आपने बुराई की बात कह दी, तो उसके बाद आपके ताल्लुकात वो नहीं रहेंगे। आप देखेंगे ये बातें ही हैं जिनसे इंसान या तो ताल्लुकात अच्छे रख सकता है या बुरे रख सकता है। जब आपने किसी को दावत भी देनी है दीन की, उसमें भी बदजुबानी पे नहीं उतराना, वो भी आसान तरीके से, उसमें भी दूसरे को फ्लेयर अप नहीं करना कि दूसरे को गुस्सा दिलाएं, आप उसको ऐसी ऐसी बातें करें कि उसको गुस्सा। इसीलिए आप देखें ना कि यहाँ पे कुरान पाक में सूरह अनाम में आप देखेंगे वहां पे भी है कि इनके जो झूठे माबूद है ना, जिनको ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं, उनको भी गाली ना दो, उनको भी बुरा भला ना कहो, इसलिए कि वो भी तुम्हारे खुदा को फिर गाली दे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना, इसलिए कि तुम देखो उनके तो हैं ही झूठे, लेकिन अल्लाह के बारे में ऐसी बात तुमने उनके मुंह से निकलवाई, तुम्हारी वजह से निकली, तो ये नहीं करना। दावत का मैदान हो, आपस के ताल्लुकात हो, घर के ताल्लुकात हो, इंडिविजुअल लेवल के ताल्लुकात हो, फैमिली के ताल्लुकात हो, या कौम के ताल्लुकात हो, हर जगह पे आसन बात, हर जगह पे अच्छे तरीके की बात। आसन बात के अंदर सच्ची बात भी है, अच्छी बात भी है, तरीका भी अच्छा होना चाहिए। वकूलु लिन्नासी हुस्ना, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके के साथ बात करो, कलिमात भी अच्छे हों, मौजू भी अच्छे हों, गंदी बातें ना हो, स्टाइल गंदा ना हो, बुरा तरीका ना हो। बाज दफा हम बात तो बड़े अच्छे तरीके के साथ करते हैं, लेकिन उस बात में इतनी चुभन होती है कि दूसरे का दिल छलनी कर देती है वो बात। कहते हैं हमने क्या कहा, तो बड़े आराम से उसको ऐसी लगाई ना, ऐसी लगाई, वैसी लगाई, आप खुद कह रहे हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है यकूल उल्लती या आसन, आसन बात करो, वो आसन तो नहीं रही। और हम उसको अच्छी रैपिंग में अगर कड़वी गोली को डाल के दे देते हैं, रहती तो कड़वी ही है। तो किसी जगह पर भी आप अगर इस एक बात पे अमल करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी दावत देने में भी तासीर होगी, आप इसी वजह से तो लोग बाज दफा शिकायत करते हैं जी, दीन वाले उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, अब मैंने मस्जिद नहीं जाना, अब मैंने, क्योंकि तरीका लोगों से बात करने का इतना रूड होता है, या बिहेवियर में ऐसी बात होती है, या बात ऐसी होती है कि दूसरे को इतना हर्ट करती है कि वो मस्जिद जाने से हट गए, या उस महफिल में जाने से हट गए जो दीन की थी, या वो उस काम से और ज्यादा वो उनकी अना जाग गई और उसके ऊपर और ज्यादा सख्त हो गए, जो गलत काम वो कर रहे थे, आपने तरीका ऐसा अपनाया उनको मना करने का, तो इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता उल्टा। इसी तरह जो आपस के ताल्लुकात हैं उनमें भी, क्योंकि शैतान जो है ना वो बैठा हुआ ताल्लुकात को खराब करने के, जब इंसान बात आसन नहीं करेगा ना, तो उसको मौका मिल जाता है अब बीच में फसाद डलाने का। इन्ना शैताना, वो तो है ही काना लिन इंसान अदुवा मुबीना, वो तो है ही इंसान का खुला दुश्मन। अब जब आपने आसन बात नहीं की तो उसको एक ओपनिंग दे दी, अब वो आके फिर वैसा फसाद खड़ा करेगा, उसको मौका ना दे कि वो फसाद डलवाए। आज हमें शौक तो बहुत है ये कहने का, हाय उम्मते मुस्लिमा एक हो जाए फिर देखो कैसा हो, लेकिन उम्मते मुस्लिमा ने क्या एक होना, हम जिस लेवल पे है हम वहां पे भी एक नहीं होते, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपनी जगह पे, वहां पे ही हमारे दिलों में कीने, इसको इस साथ ताल्लुक खराब, उसके साथ ताल्लुक, उसको ये कह दिया, उस तलख कलामियां, बात अच्छे तरीके से तो हम भी नहीं करते। जबकि आपसे सलम ने क्या फरमाया, ये अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, तो हमने खुद तो इसके ऊपर अमल नहीं किया, उम्मत के लेवल पे तो बात की बात है।